الحمد لله وكفاه، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم جماعت، جب بھی کسی شخص کو اس کا شیخ اجازت دیتا ہے، کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے دیتا ہے، اپنی مرضی نہیں ہوتی، اپنی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ جب یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو پھر مشائخ اس ذمہ داری کو کسی نہ کسی کے کاندھے پر ڈال دیتے ہیں. 14 سال سے یہ ذمہ داری اسی طرح سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتے ہوئے آج تک ہمارے پاس پہنچی ہے کہ علم القال نہیں ہے، علم الحال ہے، یہ کیفیت ہے جو سینے سے دوسرے سینے میں ٹرانسفر ہوتی ہے. جب کسی کو اجازت دی جاتی ہے تو اس کو ایک نعمت دی جاتی ہے، وہ نعمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے قلب سے اس کو دوسروں کے قلوب میں داخل کرتا ہے. اس کا نام توجہ کہلاتا ہے. مشائخ کی صحبت میں آنے والے، جہاں مشائخ کی بات چیت سنتے ہیں، ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ ان کو ملتی ہے، اس کا نام ہے توجہ. وہ فیض ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اگر دنیا جہان کا مال خرچ کر دیا جائے تو یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. شاید لوگ یہ کہیں کہ ہم شیرنی کا دودھ مال پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن یہ وہ نعمت ہے جو مال پیسے سے نہیں حاصل کی جا سکتی. یہ امانت ہوتی ہے، امانت داروں کے حوالے کی جاتی ہے، اور اس توجہ کے بارے میں آج بیان ہوگا. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے سالکین کو. تو عرض ہے کہ یہ توجہ اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان اپنی پوری ہمت کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کسی چیز پر مکمل دھیان کرتا ہے اور اس دھیان کو اس پر فوکس کرتا ہے، کنسنٹریٹ کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ توجہ ہے. یہ توجہ انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور جانوروں میں بھی ہوتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. پرندوں میں ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہے پونچھ. یہ پرندہ روس کے پہاڑوں میں رہتا ہے، انڈے دیتا ہے، پھر اس کے بعد سفر پہ چلا جاتا ہے، لیکن اپنی توجہ ان انڈوں کی طرف رکھتا ہے اور وہاں سے بچے نکل آتے ہیں. سبحان اللہ، فقط اس پرندے کی توجہ اپنے انڈوں کی طرف ہوتی ہے. سانپ کی ایک ورائٹی ایسی بھی ہے جو ڈستے نہیں ہے، बल्कि वो कंसंट्रेट करते हैं, तवज्जा देते हैं और उनका शिकार उनके सामने निढाल हो जाता है, गिर जाता है। फकत तवज्जा देने से सांप जो है वो अपने शिकार को शिकार कर देता है। आम आदमियों में भी ये तवज्जा होती है। मिसाल के तौर पर आपकी तवज्जा भूख की तरफ हो गई या आपकी तवज्जा किसी खास खाने की तरफ हो गई, आपको उसका अपने जिस्म पे असर महसूस होंगे। मिठाई का जिक्र या खट मिट का जिक्र कोई कर दे तो जो है मुंह में पानी आ जाता है। फकत तवज्जा की है और इस तवज्जा की वजह से अब रिएक्शन हुआ जिस्म के अंदर और जुबान जो है उसने उस मिठास को महसूस कर दी। आपने देखा होगा कि महफल में किसी बंदे को जमाई आ गई, यॉनिंग जिसे कहते हैं। अब अगर उसको यॉनिंग उसने की, जमाई ली, तो दूसरा बंदा जो पास बैठा होता है उसको उसकी तवज्जा जाती है नींद की तरफ। तो आप देखेंगे कि एक बंदे ने अगर जमाई ली तो कई बंदों को वहां बैठे बैठे जमाई आ जाती। वजह क्या हुई है कि ये उसकी तवज्जा नींद की तरफ चली गई और नींद के असरात उसके ऊपर होने लगे। आपने तवज्जा की और किसी परेशानी का ख्याल दिल में जमाया, आपने महसूस किया, आप नर्वस हो गए। किसी बात के बारे में सोचा, आपको वो मंजर याद करके अच्छा अच्छा महसूस होने लगा। देखो आम आदमियों को भी इस तवज्जा के असरात होते हैं। मिसाल तो इतनी अच्छी सी नहीं है, लेकिन अगर आप बैठे बैठे ये सोचे कि मुझे पेशाब आ रहा है तो आपको महसूस होगा यार बाथरूम जाना चाहिए। तो ये भी आपने मुझे पेशाब आ रहा है, बाथरूम की हाजत शुरू हुई, अब हम खास के लिए चले जाएंगे। बाद लोगों को ये मुसीबत होती है कि उनकी तवज्जा अटकी होती है बाथरूम की तरफ। बेचारे नमाज से पहले कई दफा जाके वजू ताजा करते हैं, कई दफा जाके पेशाब करते हैं, ये भी बीमारी हो जाती है बंदे को। पेशाब करके फारिग हो जाते हैं, तवज्जा नहीं हटती, बैठे रहते हैं, जान नहीं छूटती, तंग होते हैं। यार पेशाब तो कर चुका हूं, अब 15-20 मिनट आधा घंटा बिला वजह बैठे रहते हैं क्योंकि इनकी तवज्जा पेशाब के ऊपर होती है। तो तवज्जा के असरात तो भाई आम आदमी में भी होते हैं। अब एक बंदा तवज्जा करके बैठता है किसी के दिल के ऊपर और उसकी मुस्बत सोच होती है, वो चाहता है कि मैं नेकियों को इस दिल में भर दूं। तो इस तरह कंसंट्रेट करने से अब एक कैफियत पैदा हो जाती है कि जो बंदा उसके दिल में इस नेकी को डाल देता है। आज के दौर में इसको साइंस के लोगों ने भी इस्तेमाल किया और इसका नाम टेलीपैथी भी रखा। वो कहते हैं कि किसी तरह ऐसा हो कि बंदा दूर दराज बैठा हुआ है और हम यहां से मैसेज उस तक पहुंचा दें। वजह क्यों है, क्यों उनको ये ख्याल आया, इसलिए कि बाज़ औक़ात आपने भी देखा होगा कि आपको कोई दोस्त याद आया, आपने कुछ देर उसके बारे में सोचा, यार वो उसको मैं फोन करता हूँ, बात करता हूँ, मसरूफियत है, आप सोचे चले जा रहे हैं कि यार मैं अभी उसको बात कर लेता, पता चला बेल रिंग हुई और उस दोस्त की कॉल आ गई। अब ऐसे यार माशाल्लाह, मैं तो आपके बारे में सोच रहा था, आपको याद कर रहा था, वो कहेगा छोड़ो छोड़ो यार, कहाँ आप हमें याद करते हैं, ऐसी बातें बनाते हैं आप तो, कितना अच्छा हो गया कभी भी नहीं आपने याद किया, कोई इतनी कॉल भी नहीं आई, कहेगा यार यकीन जानो आज मैं आपको ही याद कर रहा था, आपने उसको यकीन दिलाया, आप फला बंदे से भी पूछ रहे हो, वो मेरे पास बैठा था, मैंने आपको जिक्र भी किया था। अल्लाह यार अजीब बात है, ये क्या चीज थी, आपने उस बंदे पे तवज्जो डाली थी और उसको क्लिक हो गई, इसके फिराक हुए। हमें याद है कि हमारा एक दोस्त था, बहुत अच्छे उसके ताल्लुकात बन गए, नेक आदमी था, मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते थे, सारा दिन दिन में हम इकट्ठे होते थे, मैं डॉर्म में रहता था और वो जो है अपने घर रहता था, और बैठ कर उसका ख्याल आता था, और वो बाहर से, उस जमाने में ना हमारे पे फोन थे ना कोई चीज थी, वो बाइसिकल के ऊपर वो अपने घर से मेरे पास आ जाता था। मैं कहता था यार अजीब बात है, आप कैसे आ गए, कहते यार पता नहीं कैसे आ गए, अब सारा दिन तो हम आपके साथ इकट्ठे थे, घर गए बस आपका ख्याल आता रहा, मेरा आखिर में उठ के आ गया, कभी वो ख्याल करता था, और ये आज जो है वहां पैदल चला जाता था, हालांकि दूर था उसका घर, पैदल का रास्ता जरा थोड़ा शॉर्टकट था, और अगर आप दूसरे रास्ते से जाए तो थोड़ा सा लंबा था, सवारी लेनी पड़ती थी, तो लिहाजा मैं पैदल ही निकल के चला जाता था, उसके घर पहुंच जाता था। कहता था कि आप कैसे आ गए, मैंने कहा भाई बस अब दिल चाह रहा था, आपको बहुत ख्याल आ रहा था, बोल लेते थे, एक दूसरे से मिलते थे, वक्त गुजारते थे, खुश होते थे। ये क्या चीज थी, ये तवज्जा है। मुराकबे में भी इसी तरह हम मुतवज्जी होकर बैठ जाते हैं, तसव्वुर करते हैं कि अभी अल्लाह ताला की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। हदीस मुबारक का मफहूम है कि बंदे के साथ वो मामला अल्लाह ताला करते हैं जैसा कि वो अल्लाह ताला के बारे में गुमान कर लेते हैं, जैसा किसी ने सोच लिया अल्लाह के बारे में तो अल्लाह ताला वैसे ही कर देंगे। कहा कि बंदे की दुआएं उस वक्त कबूल होती रहती हैं जब तक कि उसका अल्लाह ताला के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो कहते हैं अल्लाह मेरी जरूर सुनेगा, अल्लाह मेरी जरूर सुनेगा, आज नहीं तो कल जरूर मेरी फरियाद कबूल हो जाएगी। जब वो ये कहते रहते एक वक्त आता है अल्लाह उसकी बात कर देते, अल्लाह बंदे के साथ वही मामला करते हैं जो बंदा अल्लाह ताला से गुमान करता है। अल्लाह माफ करे, आजकल ऐसे बंदे भी हैं कहते हैं जानो तो जहन्नम में ही है ना, ऐसी बात कह देते हैं, ओ जी हमारा क्या है, हम तो गुनाहगार बंदे हैं, जाना तो हमने जहन्नम में ही है। यानी अल्लाह ताला का गफूर होना, अल्लाह का रहीम होना, ये सिफत है अल्लाह की, उनका गुमान ही होता है जाना तो जहन्नम में ही है ना। मैंने कहा बख्शा जाना है, मैं कहा इस काबिल हूं, देखो जैसे अल्लाह के खजाने में कोई कमी हो, ऐसी ऐसा गुमान अल्लाह के बारे में कर लेना, ये कितनी बुरी बात है। अब ये नियामत जो है बंदे को नसीब होती है, और अल्लाह वाले फिर इस नियामत से फायदा उठाते हैं। बाद उलमा ने, मुफ्तियान ने ये भी कहा, फकत यूं कहा कि भाई ये तवज्जो देना जायज नहीं है, ये नहीं कहा कि किस किस्म की तवज्जो। देखो ना, अब अगर आप कहें क्या एक बच्चे का छुरी से खेलना जायज है, आप कहेंगे नहीं भाई नहीं जायज नहीं, खतरनाक। क्या एक बड़े का उस छुरी का इस्तेमाल करना जायज है, या जायज है, क्योंकि ये एक ऐसी नेमत है जिससे इंसानों पर असर होता है, और इसको जो है वो लोग भी यूज करते हैं जो मुसलमान भी नहीं है, शरारती लोग होते हैं, बैठकर लोगों के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब ये शैतानी तवज्जा है, जैसा कि अर्ज किया कि तवज्जा तो भाई आम आदमी की भी होती है, और जिस किसी ने इसकी मश्क कर लियो, प्रैक्टिस कर लियो, तो वो तो फिर इससे खेल सकता है ना। अब जरूरी है कि कोई अगर मुत्तकी बंदा हो, परहेजगार हो, वो तो इसको इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर कोई नेक मुत्तकी नहीं है, परहेजगार ही नहीं है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? तो उसको ये काम नहीं करने चाहिए, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये एक किस्म का यूं समझें कि अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत चार्ज हो जाती है, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में भर जाती है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है, हाई वोल्टेज हो जाता है, जनरेटर्स होते हैं। अब इसका कनेक्शन अगर किसी चीज से देंगे तो वो उस अप्लायंस को भी चला देगा, क्योंकि तो इसके अंदर स्टोर हो गई है वो चीज। और अगर इसके साथ सप्लाई आ रही हो तो फिर क्या होगा? मशायख का एक चेन है, जब उसको इजाजत दी गई तो क्या हुआ? पीछे से एक तार ऐसी जुड़ गई कि सप्लाई चल पड़ी। अब ये इसके साथ जितने मर्जी बल्ब दिला लो, जो मर्जी कर लो। तो यूं समझिए, करंट होता है इश्क़ इलाही का। जो भी करीब आता है वो स्पार्क हो जाता है, उसको इफेक्ट होता है। बस शर्त ये है कि भाई आपका प्लग उसके मुताबिक होना चाहिए, कनेक्शन सही तरह से जुड़ना चाहिए। अगर आप इसको सही तरह से नहीं जोड़ेंगे, मतलब एक अप्लायंसेस है उसका जो वो इसको जो जोड़ते हैं, जो यहाँ पर लगे हुए, ये क्या चीज है? हैं? नहीं, आउटलेट तो वो अंदर वाला हो गया ना, ये जो उसके साथ लगाते हैं, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये प्लग होगा ना, ये जो जैसे कंप्यूटर का प्लग बना था जो आउटलेट में डाल देते हैं, तो ये जो है अब हर मुल्क में डिफरेंट होता है। किसी के तीन फेज वाला बना होता है, किसी का अजीब टेढ़े टेढ़े से होते हैं, है ना? तो वो जाकर उसमें फिट नहीं होता है? तो ये फिटिंग चाहिए सालिक की और शेख की, आउटलेट और वो जो है क्या कहा है इसका नाम क्या बनाया, प्लग जो है, ये आपस में जो है इंटरफेस करना चाहिए। ये इंटरफेस नहीं होता बस समझो कि भाई करंट नहीं चलता, अब अप्लाई कैसे चलेगा? इसी में सारी देर लगती है, इसी को बनाते रहते हैं, ये प्लग ही नहीं बनता। किसी का थ्री वाला बना होता है, ऐसे टेढ़ा सा होता है, किसी का कुछ होता है, अब आगे से जो शेख का होता है वो और तरह से आउटलेट होता है, अब ये मशीन चलाना चाहता है, कैसे चलाएगा, इसको जोड़ेगा कैसे? वरना अल्लाह वालों के दिलों के अंदर अल्लाह ने ऐसी अनवारात रखी हुई है कि कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये क्या बात हुई है जी कि आप बिजली में उंगली डाले और अब वो आपको छोड़ दे है जी? किसी अल्लाह वाले के पास आओ और वो आपको ऐसे जाने दे कि कार ही न करे, वो तो बैठे होते हैं, दिलों के मकनातीस होते हैं। इसीलिए मना किया जाता है कि जो इब्तदा के सालकीन होते हैं इनको इधर उधर दूसरे मशाइख के पास भी नहीं जाना चाहिए। अब इधर उधर जाएंगे वो भी तो मकनातीस होगा ना, वो आपको खींचेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में, अपने शेख से भी आपका काम खराब। एक शेख के साथ लोहे को एक मकनातीस के साथ जोड़ दो, बस पढ़ रहे वो मकनातीस बन जाएगा। वंडरिंग अराउंड अगर करना शुरू किया तो बस आपका काम खराब हो गया। एक जगह पर दिल लगाना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी को नजर लग गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उतारने का तरीका बताया। अब आप अंदाजा करें यार, अल-आइनु हक होना, ये जो नजर लग रहा है हक है ना, सच्ची बात है, नजर लग जाती है, और जो नजर लगती है इसके अंदर कीना होता है, बोझ होता है, हसद होती है, अदावत होती है, गुस्सा होता है, इसका भी असर होता है, ये वाली नजर लग जाती है। और जिस दिल में मोहब्बत हो, हमदर्दी हो, मेहरबानी हो, बताओ उसकी नजर नहीं लगेगी, उसकी नजर भी लग जाएगी। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। जब ये नजर लगती है तो क्या होता है, बंदे के हाल बदल जाते हैं। हमारे मशायख अपनी तमाम रूहानी ताकतों को जमा करके लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और साफ जाहिर है वो इसको दुनिया के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इसको दीन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये रूहानी ताकत है, और इस बात का अहद लिया जाता है, जब किसी को मजाज बनाया जाता है तो इस बात का अहद लिया जाता है कि तुम इसको गलत इस्तेमाल नहीं करो, इंसानों के दिलों के ऊपर इस्तेमाल करोगे। हज़रत अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा थे, मिस्कीनपुर शरीफ जाना चाहते होंगे, और उस जमाने में पुराने इंजन होते थे, पुराने इंजन होते थे, और ये जनाब स्टेशन पर आए और ये उस ट्रेन में बैठना चाहते थे ना, वो इंजन वाला खड़ा हुआ था और उसका इंजन नहीं चलता था, तो इन्होंने उससे कहा कि भाई मुझे जो है पहुंचना है फला जगह पर, मुझे भी ले जाओ। भाई ये कोई ट्रेन तो नहीं है ना कि भाई इसे आप बिठा के ले जाए और फला करें, तो वाक्य पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उसको अटमोस्ट वाक्य सुना रहा हूँ। तो बहर वो उन्होंने क्या किया, तवज्जा दी इंजन के ऊपर, स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट हो गया, और उन्होंने बंदे को कहा यार हमें बिठा लो ना, क्योंकि अब ऐसा होता ना जैसे 10-20 माइल्स का ट्रैवलिंग होती है, तो ये जो इंजन वाले होते हैं ना, ये जा रहे होते हैं अपने वो जो है उसको सारे सिस्टम को चेक करने के लिए, और इस किस्म का वो जो है सादा से मुल्क और सादा जमाने की बातें हैं, और यार हमें भी कहीं बीच में बिठा लेना कहीं पर, तो हमें भी लेके चलो। और कहते नहीं, एक कानूनी तौर पे नहीं है इजाजत, हम नहीं बिठा सकते, उन्होंने इसको छोड़ दिया। जब उन्होंने उतार दिया वो इंजन फिर खड़ा हो गया, तो फिर इन्होंने जो है वो पिछाल पिछाल के भी इंजन क्यों रुक गया है, सही, फिर उन्होंने तवज्जो दी, वो इंजन फिर स्टार्ट हो गया, तो अब वो फिर चलने लगे, उन्होंने कहा यार हमें भी बिठा लो ना, तो उन्होंने कहा भाई हमने बोला ना आपसे कहा है कि हम नहीं बिठा सकते, इजाजत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, इंजन फिर रुक गया। वो एक दो दफा जब ऐसे हुआ तो वो समझ गया यार ये मोदी साहब कुछ कर रहे हैं, ये चक्कर है, उन्होंने कहा यार इसको बिठाओ अंदर, जो बंदे वहां काम करने वाले थे ना, उन्होंने कहा यार इनको बिठाओ, उन्होंने बिठाया है, ओ जनाब इंजन ठक 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 जा रहा है, ओ जनाब पहुंच गए जी मिस्कीनपुर शरीफ, बड़े खुश के अल्हम्दुलिल्लाह जी शेख की खानकाह में पहुंच गए। मिस्कीनपुर आज जाना मुश्किल है, उस जमाने में जाना कितना मुश्किल होगा, कितना पैदल चलना पड़ता होगा, तो ये जनाब वहां पर पहुंच गए। वहां तो अब वो ट्रेन पटरी वहां से करीब से गुजरती होगी शेख की खानकाह के, वहां जाके उन्होंने कहा हमें भी उतार देते, हमने आना था, चलो जी जरा समाप्त कर। जब ये पहुंचे हजरत के पास और जनाब हजरत को ये किस्सा पता चला, तो हजरत का चेहरा लाल, हजरत सख्त गुस्से, हजरत ने कहा तुमने इस निस्बत की कदर नहीं की, काश के तुम इसको लोहे की बजाय तुम किसी के दिल पर इस्तेमाल करते। ओहो, इसको तो अंदाजा नहीं था कि आज हमारी ऐसी क्लास होनी है। हजरत ने वो खिंचाई की, वो खिंचाई की कि खलीफा साहब आइंदा कभी जो किसी लोहे पे तवज्जो डाले, سبق حاصل ہو گیا کہ بھائی یہ نہیں کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اس امانت کو لوگوں کے دلوں پر خرچ کرنا ہے, نہ کہ اپنے اٹکے ہوئے کاموں کو پورا کرنا. یہ امانت داری نہیں ہے. اللہ اکبر. آج کل تو بھائی شاؤں سے علاج بھی کیا جاتا ہے, ریڈیشن تھراپی بھی ہوتی ہے نا, جسمانی بیماریوں کا علاج ریڈیشن پہ کرتے ہیں, تو روحانی بیماریوں کا علاج بھی ریڈیشن سے کیا جا سکتا ہے. اہل اللہ یہ مشائخ جو ہے, جب ان کو اجازت مل جاتی ہے تب یہ توجہ دیتے ہیں. اس کی مثال جو سمجھ لیں, سابقین کو جب یہ توجہ ملتی ہے ان کے قلوب اسپارک ہوتے ہیں, وہ اس توجہ کو ابزارب کرتے ہیں, ایک برتن کی طرح اکٹھا کرتے ہیں اس برتن میں. اب ان کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ کہیں پر بھی بیٹھیں گے یہ عطر کی شیشی کی طرح ہوں گے. آپ نے جو ہے عطر لگایا ہوا ہے, خوشبو لگائی ہوئی ہے, جو بھی بیٹھے گا کہے گا سبحان اللہ یار بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ. سالکین کہیں پر بھی جاتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار آپ تو ماشاء اللہ بہت دورانی ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ سے دیکھتے ہی محبت ہونے لگتی ہے. اور سالکین کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی میں بزرگ بن گیا ہوں, ہے نا, اس کو اپنی یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے. کیوں, وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیخ کی توجہات ہوتی ہیں اور یہ اس کو ابزارو کیے بیٹھے ہوتے ہیں. جتنا بھی آپ دیکھیں نا, آپ نے اگر ایک کینڈل بھی جلا لی ہے اس کی روشنی تو ہوگی نا, اندھیرے کمرے میں بیٹھیں گے وہاں ایک کینڈل بھی بیٹھی ہے رکھ دیں روشنی ہوگی. لیکن اگر یہ سالک توجہ دینے لگ جائے, اب اتر کی شیشی ہے آپ بانٹنا شروع کر دیں, ہر ایک کو دینا شروع کر دیں, تو کیا ہوگا, تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جائے گی, ہے نا. جو سالکین جن کو اجازت نہیں ہوتی, جب یہ توجہ دیتے ہیں یہ خود خالی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پیچھے سے سپلائی لائن چاہیے, کنیکشن چاہیے. وہ سپلائی ملتی رہے گی تو یہ آگے چاہے بانٹتے چلے جاؤ, ہے جی, یہ جو فیکٹری دے رہی ہے آگے بانٹو دیتے جاؤ, اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہے جی. اس کو کہتے ہیں جیسے جاری پانی ہوتا ہے, دریا ہوتا ہے, دریا میں پیچھے سے سپلائی آ رہی ہوتی ہے, آگے کھال چل رہے ہوتے ہیں, نہریں ہوتی ہیں, لوگ جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, خوب چل رہا ہوتا ہے. یا ایک چشمہ نیچے سے نکلا ہوا ہے, پیچھے سے پانی آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, آگے جا رہا ہے. اب یہ چشمہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتا کیونکہ نیچے سے آ رہا ہے آگے جا رہا ہے. آج زمزم کتنے عرصے سے چل رہا ہے, چل رہا ہے ماشاء اللہ, پیتے جاؤ جتنا مرضی پیتے جاؤ. تو توجہ کون ڈالتا ہے؟ جس کو پیچھے سے سپلائی آتی ہے وہ آگے ڈالتا ہے. اور توجہ لیتا کون ہے؟ خالقین لیتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ ابزارو کرتے ہیں اپنے لطائف کے اوپر, محسوس کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ توجہ دی جاتی ہے اور اس طرح سے یہ توجہ لی جاتی ہے. بعض دفعہ یہ توجہ انفرادی بھی ڈالی جاتی ہے اور بعض اوقات یہ توجہ اجتماعی بھی دی جاتی ہے. عموماً مشائخ جو ہے وہ اس توجہ کو جو ہے اجتماعی طور پہ ڈالتے ہیں, جیسے بارش برستی ہے نا ایسے یہ برستے رہتے ہیں. مشائخ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تمام قلوب کو منور کرتے رہیں, تمام قلوب کے اوپر توجہ ڈالتے رہیں. یہ ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ تم نے یہی کام کرنا. ابتدا میں مساجد کے پاس تو کوئی سکل بھی نہیں تھی, حضرت نے اجازت دی اور اجازت دینے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھئی کام کرو. میں نے کہا کیا کام کریں, آپ کیسے کسی کے پاس جائیں اور کہیں آپ ہمارے سے مرید ہو جاؤ, کہیں گے خیر ہے طبیعت ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پیشنٹ نہیں ملتے, اب آپ نے یہ کام شروع کر دیا. عجیب سی بات ہے نا, بولے کیا اب کیا کہیں گے, آج اجازت مل گئی ہے اور اس کے بعد بندہ اٹھ کے آپ لوگوں کو کہ میرے مرید ہو جائے نا, بہت عجیب سی بات ہے. تو جیسے میں خیال آیا کہ کیا کہا جائے, کیسے کام کریں, لہٰذا کیا کیا ہم نے، ایک بند کمرے میں بیٹھ گئے اور لوگوں کے قلوب پر توجہ دینی شروع کر دی. بیٹھے ہمارے پاس جو چیز دی انہوں نے نعمت، اس کو استعمال کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ماشاء اللہ توجہ دے رہے ہیں. اللہ کی خان پتہ نہیں کس نے پہلی دفعہ کہا کہ جی میں نے بیعت کرنی ہے، پھر میں نے بیعت کرنی ہے، پھر میں نے بیعت کرنی ہے، چل اس کا چل پڑا جی، بیعت کا کام چل پڑا. تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ عموماً توجہ دینی ہوتی ہے، ہاں کبھی کبھی انفرادی توجہ بھی دی جاتی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، ایسی شہوت پرستی ہوتی ہے کسی کے قلب میں، تو اس کو سلب کر کے اس سے نکالا جاتا ہے. تو مشائخ پھر جو ہے ایسی توجہ انفرادی طور پر، خاص طور پر ایسے صالحین کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی گناہوں کی وہ جو ایک کیفیت ہے اس کو نکال دے، سانپ کا زہر ہوتا ہے تو اس کو نکال دے تاکہ وہ ڈسنے کے قابل نہ رہے، وجرس نہ رہے. تو ایسا بھی مشائخ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دینے میں اسلام قبول کرتا ہوں. آپ نے ان کو تھوڑا بہت سمجھایا بتایا تو بھی ایسے نہیں کرتے ہوتے. پھر آپ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا دی، آپ نے دعا دی کہ اللہ اس سینے کو پاک کر دے. اور کیا کیا اس کے اندر؟ وہ توجہ ڈالی اور نکال کے وہ زہر بہر پھینک دیا. اور صحابی کیا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سب سے گندی بات جو لگتی تھی وہ زنا لگتی، گناہوں میں سب سے بدترین گناہ مجھے زنا لگتا تھا. وجہ کیا بنی؟ اللہ تعالی سے سب نے ڈالتی زہر. ان چیزوں کو پڑھا جائے نا اور سمجھا جائے، بلا وجہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سینے پہ ہاتھ نہیں رکھ دیں گے، کچھ تو ہوگی وجہ اس کی. صحابی تھے ان کے یہاں سے فور ہیڈ سے بالوں کو پکڑا، کیا کیا اس کے بعد؟ اچھا جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا گلے سے لگا کر، ایک طرف سے ملائکہ کا سردار ہے اور دوسری طرف کون کھڑا ہوا ہے؟ انبیاء کا سردار کھڑا ہوا ہے. ملائکہ کا سردار کہہ رہا ہے اقرا، پڑھے ہو گئے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ سینے سے لگا کے ایسے ٹائٹ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جبریل علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ وجہ ڈالی ہے، ملائکہ کی توجہات کی ساری کی ساری داخل کر دی. حدیث جبرائیل ہے اور اس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور بعض کتابوں میں لکھا ہے حدیث کے روایت میں کہ آپ کے نی جوائنٹ کے ساتھ انہوں نے آ کے نی جوائنٹ جوڑ دیا، ٹچ کر دیا. اب بتائیں اگر کسی بھی مدرسے کے اندر استاد بیٹھا ہو اور ایک طالب علم آئے اور آ کر نی جوائنٹ کے ساتھ، نی جوائنٹ کو استاد کے ساتھ ٹچ کر دے، استاد کیا کہے گا؟ تھوڑا پرے ہو کے بیٹھو، کیا ہے اوپر چڑھ رہے ہو، ایسے کہنا چاہیے نا. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ آپ سرسر کے نام کے ہاتھ رکھ دیا، اور اگر کوئی شاگرد ایسا کرے تو میرا خیال ہے کہ تھپڑ بھی کھائے گا، ہے نا. اور جو ہے اس حدیث جبرائیل کے اندر بتایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے صحابہ کرام کو، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے جو ہے سوال نہیں پوچھ سکتے، لہٰذا آپ کو یہ بات سمجھانی سکھانی تھی. یہ جو مس کیا گیا، ٹچ کیا گیا، اس میں کیا ہوا ہے؟ کوئی نعمت کیا ہوئی ہے؟ کوئی چیز ہوئی ہے؟ یعنی بلا وجہ سے اتنے بڑے शख्सियात ऐसे बिना वजह कोई एक्शन कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ भी नहीं किया करते थे अल्लाह की मर्जी के बगैर। हजरत ख्वाजा अहमद सईद कुरैशी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि बाद लोगों के कुलूब पर मैं तवज्जा देता हूँ और मुझे मेरा फैज टकरा के वापस आता है। ऐसे बंद दरवाजे होते हैं, है जी? तो फरमाते थे कि उनके कुलूब से फैज मेरा टकरा के वापस आता है और कहते थे मुझे महसूस होता है कि इन दिलों में कोई गुंजाइश नहीं, इन दिलों में कोई गुंजाइश। बाज इंसान पूरी हिम्मत लगाता है, कोशिश करता है, लेकिन बाज दिल ऐसे सख्त होते हैं, बाज मजमे ऐसे सख्त होते हैं, इंसान कहते हैं कि यार इन दिलों में कोई गुंजाइश नहीं है, जो मर्जी कर लो। मुरीदों को धक्का लगाना पड़ता है, सालिकीन को धक्का लगाना पड़ता है, जब स्टार्ट देना पड़ता है, ये मशाइख काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, आगे से स्फुर्दगी नहीं होती, स्फुर्दगी नहीं होती, है जी? और पता नहीं क्यों नहीं होती स्फुर्दगी, ये नहीं सोचते हैं कि भाई शेख शरीयत पे ही तो चलाएगा, क्या वो अल्लाह वाला बंदा नहीं है? आपने उसको आजमा नहीं लिया, देख नहीं लिया, समझ नहीं लिया। अब आप अपने आप को उसके हवाले करेंगे, वो दुआएं मांगेगा, तवज्जोहात देगा, आपको दीन के ऊपर चला देगा, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। लेकिन स्पुर्दगी नहीं होती, कोई तो 50% स्पुर्द होता है जी, और कोई किसी लेवल पे अटका होता है। शायद समझाना चाहता है, आगे से कहते नहीं नहीं हजरत ये बात नहीं है, ये बात है। अब बताओगे वो, जब ये बात नहीं है तो ये बात है, तो फिर आप क्या करेंगे इसको, खड़े जोर मारते रहो। वो कहे कि भाई फला मसला है तेरा, और आपको नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। और भाई अपने गुनाहों को शेख से छुपाते हैं, अपनी कैफियात शेख को नहीं बताते। तुम अगर छुपाओगे, अल्लाह अपनी मार्फत को तुमसे छुपा देंगे। ये कैसी अजीब सी बात है कि भाई शेख सच्चा हो और तुम उसके हवाले हो, और वो जो है अब आपको इत्तबाए सुन्नत सिखाए, आपको अल्लाह की मोहब्बत बताए। ये सिलसिला या नक्शबंदिया तो इंसान बनाने की मशीन है, इंसानों को इंसान बनाने की मशीन है। रहमतुल्लाह फरमाते हैं सालिकीन की सुस्ती के सिवा और कोई रुकावट नहीं है इस सिलसिले में, यानी इतनी सच्ची पक्की दवाई है कि इसको सवाए इसके कि तुम अपने अंदर डालो। एक बंदे ने प्रिस्क्रिप्शन लेके जेब में रखी हुई है, 10 साल फिरता रहे, उसके इलाज नहीं होगा। हाँ दवाई लेगा, खाएगा, पक्की गारंटीड बात है कि इससे शिफा आ जाएगी। आप नहीं दवाई ले रहे, नहीं खा रहे, अच्छा भाई ये बताओ, जिसने जितनी दवाई खाई है किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम खुद गवाही दे दो, मैंने इतनी गोलियां खाई है, इतनी शिफा मुझे हासिल हुई है, इतने मैंने जिंदगी में मुराकबे किए हैं और इतने मुराकबे से इतना मुझे फायदा जरूर हुआ है। जी जितना तुमने किया उतना तुम्हें फायदा मिल चुका। आप बताओ किसी और से पूछने की जरूरत है? किसी ने चाहे जिंदगी में एक बार भी मुराकबा किया होगा, वो भी गवाही देगा कि जितनी देर मैंने मुराकबा किया था मुझे सुपुरसुकून महसूस हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले मखलूक को अल्लाह ताला से मिलाते हैं, अपने महबूब से अल्लाह ताला को मिलाते हैं, और अल्लाह ताला को ये मिलाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। बाजों की ये भी कहते हैं یہ سلسلہ نقشبندیہ کے جو مشائخ ہوتے ہیں یہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے سے ہوتے ہیں, ان کے یہاں کوئی ہو ہوا نہیں ہوتی, ان کے محفلوں میں جائیں عام سے بندے لگتے ہیں, خاص بات تو لگتی نہیں ہے, کوئی بیٹھے ہوئے کر رہے ہو واہ واہ ذکر جناب خوب انگیٹھی گرم ہوئی ہوئی ہو تو پتہ چلے, آپ جائیں عام سی سادہ سی ملاقات لگتی ہے اور اٹھ کے آپ آ جاتے ہیں, کوئی بات ایسی لگتی تو نہیں ہے نا. لیکن انہی ملاقاتوں کو کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں گے کہ بندے تو تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, یہ کیسے ہو گیا بھائی ٹھنڈے ٹھنڈے؟ کیا اللہ رب العزت نے ٹھنڈے ٹھنڈے لکڑیوں کے اندر آگ نہیں بھری ہوئی؟ لکڑی کو آگ لگائیں گے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوگی لیکن اس میں آگ بھری ہوتی ہے, اللہ نے بنائی ہے, اللہ جیسے چاہتے ہیں جی ان گیلی لکڑیوں میں بھی اللہ آگ پیدا کر دیتے ہیں, بلکہ ان مشائق کا حال تو ہوتا ہے نور میں ہو یا نار میں رہنا, ہر گھڑی یاد یار میں رہنا, کند جھونکے خزا کے بس سہلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. یہ تو ایسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ٹھنڈے نہیں ہوتے, اندر سے پورے گرم ہوتے ہیں. اب مردوں کو تو بھائی رابطہ شیخ ملتا ہے, وہ شیخ کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں, توجہات بھی زیادہ لیتے ہیں, عورتیں دور ہوتی ہیں اور وہ شکوے بھی کرتی ہیں کہ ہم تو نہیں آ سکتے, ہم تو نہیں بیٹھ سکتے, آج بھی شکوا کرتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا کرتی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہمارے سے بازی لے گئے وہ آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہنے والی ہو گئی اور وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہم سب جو ہے پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم کیا کریں. اب پردے میں بیٹھنا ان کا دور رہنا, یہ بھی تو مجاہدہ ہے نا, یہ بھی مجاہدہ ہے. تو بھائی ان بہنوں کے لیے گزارش ہے کہ اگر تم دکھا کے ذکر کرو گی مراقبے کرو گی نا, الحمدللہ یہ توجہات جو ہے نا ان کے فاصلے کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا, جو کہیں بھی ہو یہ پہنچ جاتی ہے, اللہ نے پہنچانا اس بندے نے تھوڑی پہنچانی ہے. تو اس پردے کے اندر بھی تمہارے دلوں پر یہ جو ہے اثرات کرے گی, یہ توجہات اثر کریں گی. ہاں یہ ہے کہ شیخ کے ہوتے ہوئے شیخ کی نصیحت ڈانٹ ٹپٹ زیادہ ہو جاتی ہے, تو جہاں توجہات ہوتی ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کام دے رہی ہوتی ہے. تو جو خواتین ہیں ان کے لیے تو مراقبے کرنا وہ مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہو گئے, کیونکہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ تو بظاہر نہیں ملتی, پھر شیخ بھی ان سے ذرا نرمی برتتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں نرمی کا حکم دیتے ہیں. تو اب ان کی غلطیاں پتہ بھی چل رہی ہوتی ہیں تب بھی بندہ پیار سے سمجھاتا رہتا ہے, پیار سے سمجھاتا رہتا ہے, اگر کوئی مرد ہو تو بندہ اس کو سختی سے سمجھاتا ہے, سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے, تو اس سے ایڈوانٹیج نہیں لینی چاہیے, ہے نا. عورتوں کو کیا چاہیے کہ بھائی وہ ہلکی سی ڈانٹ کو بھی کافی سمجھا کرے, یہ نہیں کہ ضرور کھل کھلا کے ڈانٹ کرنی ہے اور اس طرح سے سمجھانا ہے, بلکہ ہلکا سا سمجھائے, اشارے سے بات سمجھا دی ہے کافی ہے, یہ بات آپ بھی نازک ہیں اور شیخ بھی چاہتا ہے کہ بھی اس نزاکت کا احترام کرے, اللہ بھی سفارش کرتا ہے عورتوں کی, تو بھی شیخ بھی اس حساب کو دھیان رکھتا ہے, یہ بات نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ کے لیے سوال کرتا ہے یا عورتوں کے ساتھ جو ہے نرم نرم بات نہیں, اللہ نے سفارش کیا آپ بھی اس کے مطابق کرتے ہیں. لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس حساب سے اپنی مراقبے زیادہ کریں اور اس توجہ کو ابزارو کریں, شیخ کی توجہ تو بھائی یکساں ہوتی ہے, سب کی طرف ایک جیسی ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی کی طرف زیادہ کسی کی طرف کم, ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اعمال ہوتے ہیں سالکین کے, ان کی تابع داری ہوتی ہے, ان کی اپنی ابزارشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض سالکین اس توجہ کو زیادہ ابزارو کر لیتے ہیں, یہ فرق ہوتا ہے, مزاجوں میں فرق ہوتا ہے. لیکن شیخ کی توجہ تو سب کی طرف برابر. اب کوئی پھول کیسا بن جاتا ہے اور کوئی پھول کیسا بن جاتا ہے. پھولوں کی قسمیں ہوتی ہیں, گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے اور دوسرے پھول بھی ہوتے ہیں. تو ہر خالق میں خوبصورتی ہوتی ہے. اب اگر شالکین آپس میں دیکھیں وہ کہیں گے یار دیکھو اس کے اندر یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے. شیخ دیکھے گا وہ کہے گا سبحان اللہ یہ فلاں قسم کا پھول ہے, اس میں بھی یہ فلاں اچھی بات ہے, اس میں وہ اچھی بات ہے, اس میں وہ اچھی بات ہے, اس میں وہ اچھی بات ہے. لیکن وہ کہے گا نہیں یار یہ تو میری طرح نہیں ہے, یہ تمہاری طرح نہیں ہے, ڈفرینٹ قسم کا پھول ہے اور پھل ہے نا, ایپل اینڈ اورنج ایک جیسے نہیں ہو سکتے, اور پھل ہے یہ اور پھل ہے. اور مالی جو ہے اس کو ایپل بھی اچھے لگ رہے ہیں اور اس کو اورنجز بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں. تو پھول جو ہے سارے پھول ہوتے ہیں, بس ان کی خوشبو مختلف, رنگ مختلف ہوتا ہے. اور یہ وجہ جو ہے اس میں کمی بیشی جو آتی ہے وہ طلب کی کمی بیشی ہوتی ہے. کسی کی طلب کیسے, کسی کی طلب کیسے. عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سب پر یکساں, عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سب پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. کوئی ہوتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں اشعار پڑھنے لگتے ہیں. عاشقوں کی ویرائٹی ہوتی ہے, کوئی کسی قسم کے کام میں لگ جاتا ہے, کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے. تو بھائی وجہ کیا ہوتی ہے, پیچھے وہ چوٹ ہوتی ہے سبحان اللہ. اچھا اب اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, شیخ کی توجہ نئے لوگوں پر زیادہ ہوتی ہے, پرانے لوگوں پر توجہ ہوتی تو ہے بلکہ زیادہ ہوتی ہے, مختلف انداز سے ہوتی ہے. دیکھو نا آبا صاحب اللہ میں کیا ہو رہا ہے, جب نئے لوگ آئے تو اللہ کے نبی سے ادھر متوجہ ہو رہے ہیں, ان کا یہ کیا ہے, یہ ایمرجنسی وارڈ والا ہے بندہ, آئی سی یو کا ہے, پیشنٹ ہے, جلدی جلدی سے علاج کریں گے ٹھیک ہو جائے گا ہے نا. اور جو کیورڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بھائی چلو بھائی آرام سے بیٹھو بھائی کیا ہے, بس ان کو ایسے دوسرے انداز سے چلایا. اور جو ایسا بندہ ہے جو بیمار ہے وہ فوراً ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے جی جلدی کر اس کو اسٹیبل, ہم نے دیکھا اس کو اسٹیبلائز کرتے ہیں, جب وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ وہ بلاتا رہتا ہے کہتے آرام سے بیٹھے چپ کرو اور پیشنٹ آ گیا ادھر توجہ کرنی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات سالکین اس بات سے یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے کہ حضرت جو ہے اب ہماری طرف وہ توجہ نہیں دے رہے, دے رہے ہیں توجہ آپ کی طرف بھی دے رہے ہیں, کمی کرو تم لیتے جاؤ لیتے جاؤ, تمہارا کام بھی بن رہا ہے. لیکن بھائی اور جگہ مصروف ہے نا, کبھی کبھی ہمارا بھی دل دکھتا ہے, ہمارے جی کے پاس جاتے ہیں, ہمارا جی چاہتے ہیں سو فیصد جی بس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کریں, ہمارے پہلے ایسے کرتے تھے اتنا ٹائم دیتے تھے ایسے ہوتا تھا, پھر اب کیا کریں اور جگہ بھی ٹائم دینا ہے. تو اس میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اطمینان سے رہنا چاہیے. شیخ کی توجہ تو بھائی عام چل رہی ہوتی ہے, بلکہ حضرت حاجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کہ وہ انڈیا کے دورے پہ گئے تو کہنے لگے مجھے عجیب سی کیفیات ہونے لگی, گئے ہوئے تھے سفر پہ گئے ہوئے تھے تو کہنے لگے اس وقت مجھے جب کیفیات ہونے لگی تو میں نے اپنی ڈائری میں وہ ٹائم اور وہ ڈیٹ لکھ لی, ٹائم اور ڈیٹ لکھ لی کہ مجھے اس وقت یہ کیفیات تھی, جیسے لوگ بعض ڈائری لکھتے ہیں لکھ لیا. کہنے کچھ عرصے کے بعد میرے پاس شیخ کا خط آیا اور شیخ کے خط کے اوپر وہی ڈیٹ اور ٹائم لکھا ہوا تھا. سالکین جو ہے نا وہ کہتے کہ جی میں ذکر کر رہا ہوں تو ذکر نہیں کر رہا, تو نہیں کر رہا تو یہ کروایا جا رہا ہے, پیچھے سے ایک پاور اسٹیشن کام کر رہا ہے کرنٹ آ رہی ہے, اور تو کہتا ہے جی میں کر رہا ہوں, میں نہیں کر رہا. हमने तो भाई आंखों से देखा है, सच्ची बात है कि भाई जो बंदे अल्लाह माफ करे सिलसिले से हट जाते ना, हम कहते हैं अब लगा के दिखाओ ना जोर, करो ना जरा। फिर तो ऐसे जैसे बलून में से हवा निकल जाती है, कुछ भी बाकी नहीं बचता, अल्लाह माफ करे। अब देखो ये तवज्जा जो है ना, बाज सालिकिन कहते हैं जी बस आप तवज्जा दें और मेरा काम सेकंडों में करें, सेकंडों में। बाज सालिकिन तो ऐसे एक्सप्रेस ट्रेन पर आते हैं, कहते हैं जी मशायख तो बहुत सारे थे, बस हमने सोचा कि आप बैठे जाते थे। अच्छा जी जजाकल्ला, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने साथ दिया है जी। और भी बहुत सारे लोग थे, आप हमारे पास आ गए, तो मकसद क्या है, जल्दी जल्दी करो भाई काम है जी। उनसे कहें भाई आप कुछ टाइम स्पेंड करें, बस हजरत क्या करो काम से फुर्सत नहीं है, है जी, बस जल्दी 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 मैंने जाना है, है ना। हर काम में जल्दी 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 वो चाहते हैं कि ऐसे जल्दी जल्दी जो ना आप हमें वली कामिल बना दे। आप केक पकाना चाहें और फुल ओवन हीट अप कर दें और उसमें रख दें अपना केक, होगा क्या, पकेगा या जलेगा। अगर ऐसी तवज्जोहात दे दें कि जिससे आनन फानन बंदा कहे जी हम कहे जी ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो जो उल्टा क्या की जल जाएगा है? तो पकाने का एक तरीका होता है, दरख्तों पे फल लगते हैं, आस्ता आस्ता पकते हैं, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे लगा और एकदम से फल बड़ा सारा हो गया और जनाब उसके बाद मीठा मीठा पक गया, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया, बच्चा आज पैदा हुआ है तो आप कहेंगे अभी अभी भाग के दिखाए, नहीं भागेगा, वो टाइम लगेगा, अपने टाइम आएगा उस टाइम खुद ब खुद बच्चे का टाइम आएगा उठ के खड़ा हो जाएगा। एक दिन सारे लोग खुश हो जाते हैं, देखो मेरा बेटा उठ के खड़ा हो गया, देखो वो चल रहा है, चल रहा है, देखो 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 चल रहा है, सुभान अल्लाह, खुश होता है। हालांकि पहले नहीं चलता था, वो बैठा होता था, एक दिन खड़ा हो जाएगा और चलना शुरू कर देगा। वो वक्त का इंतजार करना पड़ता है। एक कुक था, नान भाई उसको कहते हैं, अच्छा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह खामोश तबा इंसान थे, उनके पड़ोसी था, उनके नेबरहुड में रहता था, रात के देर में कहीं उनके घर मेहमान आ गए, फ्रिज चली होते थे ना कि फ्रिज खोलेंगे और जनाब शरबत पिएंगे, खाने खाएंगे, है आप मेहमान भी ऐसे दूर से आए हैं, खाना भी खिलाना है और घर वाले भी साफ जा रहे थके हुए हैं, घर में खाने को भी कुछ हुए नहीं है, आप हजरत भी जाए कहाँ से सौदा लाए, कैसे उसको पकाए, कैसे इन मेहमानों को खिलाए, उनको भूख भी खूब लगी हुई है, दिल में ये परेशान भी है, तुम बहुत सारे मेहमान होंगे ऐसे। तो इतने में ये जो पड़ोसी था और ये कुक था, नान भाई था, इसने फटाफट खाना छाना इसने पका लिया और ये रात को लेकर आ गया, हजरत ये खाना है, आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, आप उनको खिलाए। अब क्योंकि अचानक खुशी मिली थी, हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह इतने खुश हुए कि यार इसने मेरा मसला हल कर दिया, इस टाइम खाना लेके आ गया, पक्का ताजा ताजा खुशबूदार खाना, वाह भाई वाह। हजरत ने उसको कहा कि मांग जो मांगता है, क्या दुआ करूं तेरे लिए, जैसे पता कर यार आज तो जी खुश कर दिया, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं। उन्होंने कहा हजरत मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपका आशिक हूँ जी, अल्लाह ने आपको इतने रुतबे दिए हुए हैं, इतने मकाम वाले हैं, मैं भी चाहता हूँ गुनाहगार का बंदा मैं भी आपकी तरह बन जाऊं, मैं तो और बात करो ऐसे नहीं, देना है तो बस ये दे दो, बस अपने जैसा ही बना सकता, मैं भी ऐसे वासिल होना चाहता हूँ। अच्छा ये बात है, तो आ सीने से लगा, अरविंद इसको सीने से लगाया, ऐसी तवज्जा डाली कि जनाब सारे फयूजात ही ट्रांसफर कर दिए। ये ले, किताबों में लिखा है कि ये बंदा 3 दिन के बाद फौत हो गया, वो अब्जार्व न कर सका, या कि जैसे केक फुल ओवन में आपने रख लिया है ना, लेकिन उन 3 दिनों में उसकी जो कैफियत थी वो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह वाली थी, हत्ता कि उसकी शक्ल भी हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह जैसी नजर आती थी, लोगों को ऐसा लगता था कि उसी तरह की शक्ल हो गई है। सुभान अल्लाह, हमारे हजरत जी कितने खूबसूरत है, लंबा कद है, खूबसूरत है जी, क्या शान है। निस्बत जब ट्रांसफर होती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जनाब, उस निस्बत की बरकत से जब कोई और होता है वो भी ऐसे लगता है उन्हीं की तरह है, लोग देखते कहते हैं यार ये तो बड़े मिलते हैं, आप तो शक्लें मिल गई है, कमाल हो गया, ऐसे अजीब सी बात हो गई है। हालांकि देखो उसका हुसन और है, दूसरे बंदे में तो वो हुसन नहीं है, वो बात ही नहीं है वो, लेकिन निस्बत ट्रांसफर होती है तो ये चीज ऐसी नजर आती है। सुभान अल्लाह, हाय हाय, अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है मेरे भाई, वो कभी तो अपनी खताओं पर नदामत करते हैं, रो रो के अल्लाह से माफिया मांगते हैं, और कभी अल्लाह की रहमत को सोचते हैं, शुक्र अदा करते हैं। एक मरतबा हजरत ने अपने सामईन को खूब हंसाया, खूब खुश किया, और उसके बाद से पूछा कि ये बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर याद इलाही कायम रही। लोगों को हैरत हुई, इसने अच्छे बातों में और हंसी और इसमें याद इलाही का कायम रखना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन देखो आम काम करते हुए, हंसी मजाक गुश यानी कि खुशगप्पी करते हुए भी, वैसे तो ये अल्फाज अच्छे नहीं है मुशायरे के लिए, खुशगप्पियां करना वो नहीं करते इस तरह, लेकिन बहरहाल फिर भी जो समझे कि इस हाल में भी याद इलाही से हाफिल नहीं होते। सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब फनाइयत के मकाम से इंसान आगे गुजर जाता है तो 1000 साल भी अगर इसको अल्लाह ताला को बुलाना चाहे तो नहीं बुला सकता, 1000 साल की भी जिंदगी मिले ये अल्लाह को नहीं भूलता। मोमिनीन जन्नत में क्यों जाएंगे, इसलिए कि अगर इनको 1000 साल की जिंदगी मिलती ये अल्लाह की इबादत करते रहते, अल्लाह हमेशा के लिए इनको खालदीन फीहा अबदा, जाओ हम आपसे राजी हो गए। वजह क्या बनी, ये नुक्ता समझने वाला है भाई जज्बान, ये नुक्ता समझने वाला है, मोमिनीन हमेशा जन्नत में क्यों रहेंगे, इसलिए कि अगर इनको 1000 साल हमेशा रहने वाली जिंदगी मिल जाती तो ये क्या करते, अल्लाह की इबादत करते रहते। कुफार जहन्नम में हमेशा क्यों रहेंगे है? अगर ये हमेशा जिंदा रहें तो ये हमेशा खुदा की नाफरमानी करते रहे, लिहाजा इनको हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाता है। और जिसका कर्ज जारी हो जाए, जिसको फलाहियत हासिल हो जाए, याद इलाही मिल जाए, ये बंदा जो है अब अल्लाह से गाफिल होना चाहे 1000 साल गुजर जाएंगे गाफिल नहीं होगा, भुलाना भी चाहो तो ना भुला सकोगे। ये वो लोग होते हैं जिनको अल्लाह फरमाते हैं ये महफूज हो जाते हैं और शैतान तरह इनके बस नहीं लगेगा, ये इसको मकाम यादाश्त कहते हैं। ऐसी नियामत मिल जाती है कि अगर वो बुलाना चाहे तो अल्लाह की तरफ से थप्पड़ लगता है, उसी वक्त जो है ना पकड़ आ जाती है, ऐसी चोट लगती है कि सीधा उसे बैठ जाता है बंदा, बुलाना चाहे बुला ना सके। ये तो बात बड़ी अजीब चीज है। आपको एक मजे की बात भी सुना दे। एक सालिक ने अपने शेख से पूछा कि हजरत बाजार से गुजरे और इधर उधर न देखें, कैसे हो सकता है? आप कहते हैं वकूफे कल भी करो, वकूफे कल भी करो, ये कैसे हो सकता है कि हम बाजार से गुजरे, तस्वीरें लगी हुई हैं और क्या क्या कुछ तमाशे हैं और पता नहीं क्या क्या गुजरती हैं, तो हमारी तवज्जो इधर उधर रह जाए। आप चाहिए पकड़ो दूध का प्याला। वो हमारे एक दोस्त है, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कहता हूँ, मस्जिद में मौलाना साहब है, बाजार के उस तरफ रहते हैं मार्केट के बाद, उनको ये दूध का प्याला पहुंचाओ, है जी, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि दूध का प्याला भरा हुआ है, जैसे ये पानी है ना भरा हुआ गिलास के अंदर, ये गिरे नहीं, बोले ये चला नहीं गिरेगा। अच्छा ठीक है, आप इसको पकड़े चले। पीछे एक मोटा सारा बंदा खड़ा हुआ था, उसको बुलाया इधर आओ, बोले इसके पीछे पीछे चलते जाओ, अगर ये दूध के ये गिलास में से पानी गिरा ना फिर थप्पड़ लगाना इसके, इसको बाजार में बेइज्जती करेगा, थप्पड़ भी लगेगा। आज मेरा इसने कहा कि हजरत से मैं क्या है तो बैठा हूँ, और वो बंदा भी पूरा बिल्कुल मौत की तरह था, खड़ा हो गया पीछे, बेटा हजरत का हुक्म है, मैं तो लगाऊंगा थप्पड़। जिसने दोनों हाथ से वो दूध का प्याला पकड़ा, ये मौलाना तक पहुंचाना है, तो लेके चल पड़ा। बोला जनाब एक एक कदम ध्यान से उठाकर उसने जाके पहुंचाया, क्योंकि डर हुआ था ना कि जरा सा गिरा तो पीछे से लगेगा थप्पड़, है जी। तो मौलाना तक पहुंचाया, वापस आया, हजरत मैंने काम कर दिया, थप्पड़ नहीं खाया, प्याला पहुंचाया। अगर हमें ऐसे ये बताओ बाजार से गुजरे थे तो फला चीज देखी थी? कुछ नहीं देखा। भाई फलाह चीज रस्ते में आती है, तुमने वो देखा? कुछ नहीं देखा। अच्छी बात है, बाजार से गुजरे और कुछ नहीं देखा। अरे वो पीछे जो बंदा आपने रखा था ना, अल्लाह माफ करे, वो वाकई रेडी था थप्पड़ लगाने के लिए। मैंने न दाएं देखा ना बाएं देखा, आराम से चुप करके दूध का प्याला सही जगह पे पहुंचा के आ गया हूँ। हमारे पास ये नूर ईमान है जी, और मौत का फरिश्ता हमारे पीछे खड़ा हुआ है जी, किसी वक्त रूह काफी कर लेगा। हमने इसको हिफाजत के साथ जो है आखिरत तक पहुंचाना है। पुल सरात हमने क्रॉस करनी है जी, पुल सरात क्रॉस करनी है। तो लिहाजा अगर ये ख्याल दिल में आ जाए तो इंसान दाएं बाएं नहीं देखेगा। तो वजुआत के चंद बातें और भी सुना देते हैं आपको, टाइम से काफी हो गया। हमें लाहौरी रहमतुल्लाह आप ये किस्सा सुनाया करते थे, तो बात है कि बाजार से जा रहा था, एक मिजू ने मुझसे पूछा, अहमद अली इंसान कहाँ बसते हैं, इंसान कहाँ है? तो वो कहते हैं कि मैंने कहा कि भाई ये सारे इंसान तो है, तो मजलूम ने ऐसी तवज्जो डाली और कहा अच्छा। तो जब कहते हैं उसने ऐसे कहा तो मैंने तवज्जो करके जब देखा तो मुझे लगा कोई सुअर की शक्ल है, कोई कुत्ते की शक्ल है, कोई भेड़िया है, कोई कुछ है, कुछ बिल्ले कुत्ते जो है ना सड़कों पर फिर रहे। कहते कुछ देर में उस कैफियत में रहा, तो जब मेरी वो कैफियत खत्म हुई तो मैंने देखा हजरत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो मजदूर के चला गया था, लेकिन वो मुझे एक सबक दे गया। और वो अपने दर्द के बाद ये कहा करते थे कि मालिक तो सब का एक है, मालिक तो सब का एक है, लेकिन मालिक का कोई 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 एक है, मालिक का कोई एक है, इंसान तो कोई 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 है, वरना तो सबके अंदर कुलूब में नफूस में जो मिसाली सूरत है वो कुत्ते बिल्ले वाली है। अगर इंसान के नफ्स को किसी जानवर की शक्ल दे दी जाए, कोई सांप होगा, कोई बिच्छू होगा, कोई खंजीर होगा, कोई कुत्ता होगा। हाय हाय, अल्लाह से अल्लाह को मांगने वाले आज बंदे नहीं रहे। कोई तुझसे कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा, जो तू मेरा तो सब कुछ मेरा, फलक मेरा जमीन मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। विद्वात के सिलसिले में हमारे हजरत जी ने एक अजीब वाक्य लिखा, कहने लगे कि एक दफा मुझे कोई चीज जो है किसी एक बरेलवी शेख को पहुंचानी थी। ये मोहिबीन होते हैं, मैं सोचा कि यार वहां जाना तो है और पता नहीं वो क्या खिलाएंगे, और मैंने उनका कुछ पैकेट देना भी होगा, तो कहने लगे चलो मैंने तजवीज सोची थी, चलो मैं रोजा रख लेता। मुझे कहेंगे कुछ खाए मैं कहूंगा जी मेरा रोजा है, मैंने उसे रोजा रख लिया और मैं वहां जो है उनके पास चला गया। फिर मैंने वहां देखा अजीब सी बिदात थी, उनमें से एक बिदत अजीब सी थी कि वो सलाम उंगली से करते थे। अच्छा, आपको हैरत हुई है, आप हाई स्कूल चले गए, वहां आपको ये जो है ना उंगली से और नी से भी सलाम करते हुए लोग आएंगे, अभी कैसे सलाम करते हैं बताओ तुझे। ये सारी चक्करबाजी आप देखा ना, ये ऐसी नहीं है कि भाई वो करते थे, वो सारे आजकल के नौजवान भी आते थे, पता नहीं क्या जी जी ड्रामा करते हैं, समझ नहीं आती ऊपर नीचे यूं करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना, ऐसे मुंह का मारा फिर यूं किया फिर ये इधर से यूं घुमाया, ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रही है कि जाल चला रहे हैं। तो अगर बात है कि वो उंगली से सलाम करते थे, कहते मैंने उनको उसकी चीज हवाले किया, तो उन्होंने जाने से पहले तवज्जो देनी शुरू कर दी। कहते 15 मिनट तक उन्होंने पक्का जोर लगाया मुझसे तवज्जो देने का, कहते मैंने भी अपना मुराकबा शुरू कर दिया। 15 मिनट के बाद मुझे कहते हैं कि भाई तेरी निस्बत बड़ी मजबूत है। तो हजरत तो अपने शेख के आशिक थे ना, वो फूले नहीं कि मेरी निस्बत बड़ी मजबूत है, फर्क के जवाब दिया कहा मेरे शेख की निस्बत बड़ी मजबूत है, मेरी निस्बत मजबूत नहीं है, मेरे शेख की निस्बत मजबूत है, इधर कुंडा मेरा अड़ा हुआ है ना, असल तो वो चीज है, तो मैं क्या हूं है? है, है। रूस में जब हजरत तशीफ ले गए तो वहां कुछ साथियों ने आपको एक जगह पर बिठाया, कहा कि हम थोड़े से काम करके आते हैं, अरे वहां पर मुराद में बैठ गए। थोड़ी देर बाद हजरत ने महसूस किया कि कोई हरकत कर रहा है मेरे साथ उल्टी सीधे काम, तो उन्होंने देखा था कि हिंदू साधु जो है ना दूर बैठा हुआ था, जुआ डाल रहा था। हजरत जी को इस बात पर डिस्टर्बेंस हुई कि ये क्या हरकत करता है, तो हजरत ने भी उसको जरा वापसी दिया और इतनी देर में साथी आ गए, हजरत उठ के चलने लगे, ये पीछे हो गए, हजरत माफ कर दे, हजरत माफ कर दे, हजरत माफ कर दे, आपने ऐसी हरकत की क्यों है? अब जो कुछ उसने अपना जंतर मंतर याद किया हुआ था ना सारा सल्व कर दिया। तो जुआत सलबी भी होती है, तो सारा जंतर मंतर गायब हो गया। अब हजरत ने कहा भी एक ही हाल है कि तौबा गायब हो जाए, लिहाजा उसने और उसकी बीवी ने कलमा पढ़ा, अब हजरत ने छोड़ा उसको, तौबा गायब हो। ऐसी हरकत कर सकते हैं। अपना एक वाक्य सुनाता हूँ, बात समेटता हूँ। एक मरतबा हमें भी इसी तरह एक शेख थे, उन्होंने इनवाइट किया कि दावत में आप आए। हम अवॉइड करते थे कि यार की महफल में ना जाए, खामखा प्रॉब्लम होगा। उनका इसरार, इधर से इनकार, तंग आया। मैंने हजरत जी से पूछा, हजरत ये तो बहुत तंग कर रहा है बंदा, और इनके कहीं न कहीं से खबर ये आई है कि उस समय मुझे नई नई इजाजत मिली थी, वो ये चाहते थे कि मेरे मातहत होके काम करो। अगर शहर में काम करना है ना तो मेरे मातहत हो जाओ, हमें बड़ा बना लो, हमारे अंडर काम करो, हमारी ताबेदारी पर काम। मैंने कहा था हमें तो ये खबर आई है और ये अब बार बार बुला रहे हैं कि भी आप आए आप आए। और उस वक्त मेरे पास भी ज्यादा कोई सालकिन वगैरह का कोई भी जवाब नहीं थी, लेकिन क्योंकि रिश्वत थी तो वो चाहते थे कि इसको काबू में लाया जाए। अरे मैं क्या, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, आप जाए। मैं क्या करूंगा, वो तो मुझे मजबूर करेंगे। अरे मैं क्या, आप जो है ना जवाब देना, अच्छी बात ठीक है जी। हम वहां चले गए उनके पास खाने वाले पे। अब उन्होंने पहले इधर उधर की मारी अपनी, बड़े बड़े जो होती हैं, हम अपने तवज्जो पे अल्लाह से लौ लगा के बैठे हुए फकीरों के पास, और है क्या है जी। तो थोड़ी देर के बाद ही हमने महसूस किया कि ये बंदा आउट ऑफ माइंड हो चुका है। आप यकीन जाने कि वो एक अच्छे खासा सोबर बंदा था, लेकिन ऑन फोन गुफ्तगु करने लगा, यानी कि बेरब्त गुफ्तगु शुरू हो गई। हत्ता के जो उनके खास लोग करीब बैठे हुए थे ना, तो वो बैठे बैठे उनके बारे में जोकिंग करने लग गया। किसी को कहते हैं तू मूसा अलैहिस्सलाम का आता है, वो बंदा एडजस्ट कर वो लंबा सा ऐसा बंदा हो, लंबा सा ऐसा बंदा है, वो शेख होकर अपने मुरीदों को जो उसके साथ, और वो उनके मुरीद मुझे आगे कह रहे हैं कि आप हजरत के साथ हो जाए, आप उनके साथ अटैच हो जाए, अपना हो जाए। जी 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 अच्छा, उसमें से एक को उसने कह दिया कि तू तो ऐसा है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का आसा। मैंने कह रहे अब इसका दिमाग खराब हो चुका है। अच्छा फिर एक और बेचारा सावला सलूना सा बैठा हुआ था, उसको कह रहे तू तो हजर है सुबह जाए। वो जो मुरीद मुझे लगे हुए थे ना कहने के चक्कर में कि भाई आप इनके साथ अटैच हो जाए अपना, तो वो तो खुद ही उससे जरा ऐसे मुतरफत में हो गए, यार ये तो हमारा शेख हमें किसी को कहता है हजरत, वक्त किसी को कहता है आपका आसा होता है जी, इसकी हालत है। तो मैंने कहा आप जो है ना ये बिल्कुल इसका माइंड खराब हो चुका है। तो खैर हमने कहा अच्छी बात है, जजाकल्ला, हमें भी इजाजत दे हम चलते हैं। तो अब वो बेचारे भैया क्या कहते हैं कि आप भी जो है कोई और चीज बनना चाहते हैं, तो बन जाए। मैंने कहा भाई ना हमें आता बनना, ना हमने हजर रसूल बनना, हमें तो अल्लाह ना करनी है हमारी जान छोड़ो। अच्छा वो खुद भी अपने आप को आर्ट फील करने लगे कि यार मैंने क्या कह दिया, और उनके अपने साथी भी नाराज हुए बैठे थे। तो हम चुप करके वहां से चले घर आए, आफियत महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला ने हमारे शेख की दुआओं का सदका अल्लाह ने हमें महफूज किया, और आज तक बैठे हुए अल्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे मालिक का करम, अल्लाह के लिए एहसान। तो बहरहाल बताना समझाना ये था कि ये निस्बत जो है ये एक चीज होती है और ये एक तवज्जो भी होती है। इसका काम जो है क्या है कि दिलों से गुनाहों की तलब को निकालना, अल्लाह की मोहब्बत को भरना है जी, दुनिया से बेतलबी हो जाना, ये मशायख की सोबत में नसीब होती है। इसकी वजह से राबता है शेख जरूरी होता है कि शेख से गाहे बगाहे राबता रखना, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए से होता है, फोन से होता है, इसमें हाल अहवाल नहीं होते कि आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, इसका नाम ये नहीं होता राबते का। कई होते बेचारे साथियों को पता नहीं होता, इसमें खामोशियां होती है, चुप होता है ताकि शेख उसी देर तवज्जा दे सके। आओ बैठे चुप करके और नसीहत लो और चले जाओ। और जो शुरू शुरू के लोग होते हैं उन बेचारों को पता नहीं होता, शेख कभी वक्त जाया करते हैं, अपना भी वक्त जाया करते हैं, टाइम लंबा लगता है, शायद भी हल्की हल्की वोल्टेज देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, अच्छा अभी आज नहीं तो कल ये ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे। जो सालकिन खालिश होकर इस रबते के लिए बैठ जाते हैं, पल भर में उनका काम बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए। जब भी अपने मशाइख के पास हम जाए जाते हैं, अपने हजरत जी के पास दो रकात सलात हाजत पढ़ते हैं, या अल्लाह हम मोहताज हैं, अल्लाह हम पाक की साफी चाहते हैं, अल्लाह हमारे कल्ब को मुनव्वर कर दीजिए, फिर अपने शेख की सब्र में डरते हुए जाते हैं, है ना, कि कहीं हमारे से कोई बेअदबी ना हो अपने शेख की, और उस महफिल में खामोशी के साथ बैठते हैं। या जब यहाँ से गया बारबाडोस में, मैं इशारा किराइयों में कई दफा मैंने आपको बताया कि भाई सब ने बातें की, मैंने कोई बात की, मैं हजरत के पास जाके चुपके से बस बैठ गया। हजरत इस आजिज को मुस्कुरा के देख रहे थे, आजिज हजरत को मुस्कुरा के देख, एक लफ्ज नहीं बोला, हमारा काम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो असल नेमत थी वही हासिल करनी थी, हाल अहवाल करने तो मकसूद नहीं थे जी, हाल अहवाल तो मकसूद नहीं थे जी, तो क्या कहे, बस बैठ के चुप करके शेख की तवज्जो मिल जाए जी, और ये एक निगाह हो जाए, मोहब्बत वाली डाल दे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी मुलाकात थी तन्हाइयों में अपने शेख के साथ, वो चुपके से वो हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह जरूर हासिल हुआ, और अपना अल्लाह खैर सुन्ना जो मकसद था। शेख के पास जाते हैं, ऐसे जाते हैं जैसे बकरी जो है पानी पीने चश्मे पे जाती है, चुपके से जाती है, अपने जो है नीज को वहां पर झुका देती है, पानी पीती है, फौरन जो है निकल जाती है। आप देखेंगे बकरी पानी पी कर खड़ी नहीं रहती, इन लोगों ने जानवरों को देखा होगा जी, उनको पता होगा कि बकरी कैसे पानी पीती है, पानी पीते ही चली जाती है। बस ये है मशाइख के साथ डील करने का तरीका। अगर और जो दूसरी बात मशाइख ने जो नसीहत कर दी, इसको पल्ले बांध लो, आप चाहे जो है सारा दिन बैठे रहे और शेख की बात को ना माने, क्या आपको मिलेगा, ऐसे ही है जैसे पाइप के अंदर आपने क्लॉक कर दिया, क्या फैल जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। क्लॉक करके बैठे होते हैं, कहते हैं जी हमारे बड़ा पार नहीं होता, तो कैसे होगा, बेतवजगियां होती हैं, बेतलबियां होती हैं, बेपरवाहियां होती हैं, ये रुकावट बन जाती है। अल्लाह ताला सबको जो है अपनी मार्फत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जो है हर चीज का एक निजाम बनाया है, बादलों से बारिश होती है, माँ बाप से औलाद मिलती है, खेतियों के अंदर जो है फल फूल लगते हैं, दरख्तों पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फल लगाते हैं, इसी तरह जो है ये हिदायत और ये जो है अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल होती है तो मशाइख के जरिए से होती है, इसका और कोई तरीका नहीं है। पूरी इस्लामी हिस्ट्री को उठा कर देख लो, कोई और तरीका नहीं है। अल्लाह की वलायत हासिल करनी है तो एक ही तरीका है, और वो ये शुरू से लेकर आज तक पूरी इस्लामी हिस्ट्री के अंदर चली आ रही है ये बात। अगर किसी को इसके अलावा कोई वलायत मिली हो तो आप मुझे बता दें, पूरी हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बड़ी नियामत है कि आज ऐसे मशाइख मौजूद है, उनसे फायदा उठा लो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।